इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी NPS पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉरपोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है किसी भी POP जैसे बैंकों NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है।
Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Vishal Sharma.
Namaskar, Market Mantra mein aap sabhi ka swagat. Karyakram mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath denge jankari share bazaar ki, saath hi un par charcha bhi karenge. चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। जयंता, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
शुक्रिया।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर। अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लाली मानेजर डेंग।
धन्यवाद विशाल। हियर वी गो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स विद द बेल्जियन काउंटर पार्ट, डिस्कसेस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज इन डाइवर्स सेक्टर्स। अटल पेंशन योजना डिजाइन बेस्ट, गारंटीज मिनिमम 8% रिटर्न, सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। एंड ब्रेंट क्रूड एग्जिबिट्स अ मार्जिनल चेंज आफ्टर प्राइस एस्केलेशन इन द प्रीवियस सेशन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से बात की, विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अटल पेंशन योजना एक लाभकारी योजना के अंतर्गत न्यूनतम 8% का रिटर्न और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी।
Prime Minister Narendra Modi spoke with Belgian Prime Minister Alexander De Croo today and discussed ways to further strengthen bilateral ties in diverse sectors. These include trade, investment, clean technologies, semiconductors, pharmaceuticals, green hydrogen, IT, defence, ports, among others. In a telephonic conversation, Prime Minister Modi congratulated his Belgian counterpart on the successful hosting of the first nuclear energy summit in Brussels. Both leaders reviewed the excellent relations between India and Belgium. The two leaders affirmed commitment to further bolster the India-EU strategic partnership under the ongoing Belgian presidency of the Council of the European Union. So, Jayanta, what does this imply for Indian markets? We've heard about semiconductors. The Honorable Prime Minister has a great vision for the country as far as semiconductors go. We learnt our lessons, when COVID happened, that we must be self-reliant in this. And once we are self-reliant in this, it'll give us a great fillip to the auto industry and so many other industries which use semiconductors and pharmaceuticals, green hydrogen, IT, defense. The whole Atmanirbhar is based on, made in India is based on defense, self-reliance, and so on and so forth.
Yeah, sure. So, see, Lalima, in the Western European cohort of countries and nations in that sense, Germany, France, and of course, Belgium, including Holland to some extent, plays an important role, both in terms of the cross flow of trade and businesses, and specifically, as you just read out a while ago, on issues related to clean energy and new and renewed methods of sustainable energy, pharmaceuticals and semiconductors. Those are precise areas where you need to focus on. Uh-huh. What's important to understand is the close trade links in the Western European markets for India, which has been gradually with every single year has been cemented much more further than what they have been, say, 10 years ago or 15 years ago, is a very important step in our geopolitical strategy too, not just getting limited to trade links. What we must understand is, as I said, small nations are important key nations in Europe. Mm-hmm. We all know that. Mm-hmm. And taking a cue from there, obviously, not only you open up trade links, the important political strategic talks, where I guess they also, touched upon issues related to Russia-Ukraine conflict and things like that. They all play a key important hinge. I guess the Prime Minister's discussions on these areas would have focused. We obviously will not be knowing what were the discussions related to Ukraine and Russia war, but nevertheless, in terms of India's inner interests, specifically related to the economic part, obviously they would have touched various important critical factors. But then, as I said, it's an ongoing thing. It's not a one-off deal which you just strike off and close. There's no deal being struck off here, but what's important to understand is they are a very important step in cementing India's ties with the Western European bloc of nations over here.
We had a free trade agreement recently signed.
Absolutely.
That was also a step in that direction,
that we
facilitate trade.
Absolutely. But then, as I said, they are trying, they means in this case, Indian government are trying to cement an important Western European nation bloc, in terms of relationships, not only just to the political part, because we do have a extremely good political leverage with most of the nations out there, mm-hmm. but also strengthening further with the business part. Because they, and as you know, in most of Europe, especially under the EU banner, a lot of these countries have partner vendors. For example, as you know, Airbus, for example, if Airbus is supplying aircraft, it's just not made in France. It's all at least 7, 8, 10 partner nations who are making the Airbus thing happen.
Mm.
So even if you make a deal with Airbus and it's being, say, sent from France, but the important part to understand is there are other partner nations who are playing a critical part in the vendor role developments. Hence, this cross-country relationship is an important step.
So everyone wins. Mm.
Yeah. कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात हुई है और जिसमें कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, क्लीन टेक्नोलॉजीज की जब बात आती है, इसमें सहयोग बढ़ाने की जब बात आती है जयंता, तो हम ये देखते हैं कि पश्चिमी देश और खासतौर पर यूरोपीय देश जो हैं, वो भारत के साथ ये क्लीन टेक्नोलॉजीज को साझा करने से पीछे हट जाते हैं. ये क्लीन टेक्नोलॉजीज की जो तकनीकें हैं, ये जो साझा किए जाने की बात है, क्योंकि भारत जैसे और भी कई देश हैं जो कि इतनी महंगी टेक्नोलॉजीज को नहीं अपने यहां उसको डेवलप कर सकते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी, इनको साझा करने के पीछे ना करने के पीछे क्या वजह है, आप
देखिए. सवाल और चिंता आपने सही यहां पे रिएक्ट किया, बट एक इम्पोर्टेंट चीज हमें यह समझना है. रिलेटेड टू क्लीन टेक्नोलॉजीज दो चीजें हैं. एक तो ग्लोबल फोकस जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक, जो सबको आंकड़े कहीं ना कहीं जाकर पहुंचना है, सबने अपना कमिटमेंट दिए हैं, कुछ अभी भी पीछे है. दूसरा सवाल यह है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पश्चिम यूरोपियन देशों में जो गोष्ठी बना हुआ है, वहां पे खास करके सस्टेनेबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजीज का दे हैव क्वाइट एन एडवांस्ड रोल अहेड. और ये शुरुआत होता है सिर्फ बेल्जियम में नहीं, अगर बेल्जियम से लेकर हॉलैंड से लेकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक जाएंगे, इंक्लूडिंग ऑयल में भी उन लोग का कुछ कुछ क्षेत्र में काफी आगे बढ़ हुए. अब सवाल यह है कि उतना आसानी से ये लोग अपना टेक्नोलॉजीज क्यों हैंड ओवर नहीं करना चाहते. उसका दो वजह है. एक तो सबसे पहले यह है कि कीमत, इसका पीछे जिस तरह का उनका रिसर्च में पैसा डूबा है, जिस तरह का डेवलप करने में पैसा डूबा है, जब तक वो स्केल ना बन पाए तब तक वो रातों रात उसको उसका कीमत पूरा कहीं ना कहीं से हासिल नहीं कर पाता. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. ऑब्वियसली नो वन विल टॉक इन दीज डिटेल्स. कोई कंपनी बोलना नहीं चाहेंगे कि भाई महंगा है, हम पैसा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए हम नहीं कर पा रहे. लेकिन मोटी तौर से यह समझा जा रहा है कि भाई आप कोई भी, नॉट ओनली इंडिया, कल का दिन में वर्ल्ड में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप बात करें, तो मोटी तौर से ब्रिक्स नेशन का अगर हम बात करें, दे आई थिंक टेक ओन ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, राइट? ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, सब मिला के. तो इस तरह का स्थिति में बहुत जरूरी है ये सब देशों में जब तक क्लीन टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से ना आते हैं, चाहे कोई भी कॉस्ट में कंपनी गवर्नमेंट, हालांकि कोई भी गवर्नमेंट महंगा कॉस्ट में लेके नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब तक ये अपना ना जाए ये सब देशों में, वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसी न किसी तरह से हासिल हो ही
नहीं सकते
किसी भी तरह से. दूसरा, आप सबको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले लालिमा ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है. 30 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, अलग अलग सब कानूने आए थे, लोग अलग अलग निर्णय लिए थे. फिर हम देखे थोड़ी देर बाद, 5, 7, 10 साल बाद लोगों ने आपस में बायलेटरल रिलेशनशिप क्रिएट करके आपस में बिजनेस शुरू कर दिए और लोग आज के तारीख में मानते हैं कि भाई बायोलिटरल ट्रेड में ज्यादा फोकस करो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें यह है कि नॉट ओनली द एक्सचेंज मनी रेट जो है, जरूरी है कि आप डॉलर्स में काम करें, आप रूपी में काम कर सकते हैं, आप रूबल्स में काम कर सकते हैं, स्विस फ्रैंक्स में काम कर सकते हैं अपना पसंद में, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे बदलते रहते हैं। मेरा मानना यह है विशाल कि क्लीन टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें, और ये बात हम सबको पता है, इट्स अ मस्ट के खास करके चार मोस्ट पॉपुलर नेशन वर्ल्ड ग्लोबली जब तक वो नहीं अपनाएंगे वर्ल्ड कांट बी अ ग्रीन वर्ल्ड, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा स्थिति में ये जरूर है कि डिस्पाइट दैट रेजिस्टेंस कि भाई कहीं ना कहीं जाके ये हैंड ओवर ऑफ टेक्नोलॉजी उतना आसानी से हो नहीं पाता है, चाहे कोई भी वजह हो, पॉलिटिकल वजह हो, लेकिन ज्यादातर टाइम कीमत इतना महंगा हो जाता है, इतना महंगा लोग सोचते हैं कि भाई कैसे इसको वो करें। तो इस स्थिति देखते हुए मैं मानता हूं इस तरह का बातचीत, और जैसे मैं कहा कि अगर 10 चीज और ट्रेड में आ जाता है तो ओवरऑल स्केल्स ऑफ इकोनॉमी का साथ साथ क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जो कॉस्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत कमी हम दे सकते हैं।
खबरें अभी और भी हैं, यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक।
के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉरपोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है, किसी भी पीओपी जैसे बैंकों एनबीएफसी के जरिए या nps trust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बात करते हैं अगली खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अटल पेंशन योजना स्वचालित प्रीमियम भुगतान पर आधारित है। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह एक लाभकारी योजना ग्राहकों के हित में है। वित्त मंत्री कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस योजना की आलोचना का जवाब दे रही थीं। उन्होंने दावा किया कि श्री रमेश एक अच्छी पेंशन योजना तैयार करने के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अटल पेंशन योजना एक गारंटी युक्त रिटर्न देती है और सरकार सब्सिडी का भुगतान करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय इस योजना पर 8% से अधिक रिटर्न मिल रहा है। जैसा जब हम अटल पेंशन योजना की बात करते हैं और वित्त मंत्री ने भी कहा कि 8% से अधिक का रिटर्न मिल रहा है, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, गैर संगठित क्षेत्र है, उसके कामगारों के लिए ये योजना जो लाई गई थी अटल पेंशन योजना, ये एक कितनी महत्वपूर्ण योजना रही है अभी तक, और ये अब तक कितनी सफल आप इस योजना को मानते हैं?
देखिए, कोई भी योजना खास करके व्हेन इट इज अ टारगेटेड वन, तो उसमें सफलता का मतलब अवधि जो है वो थोड़ा बहुत एक तो लंबा होना चाहिए, क्योंकि आप साल दो साल में सिर्फ आंकड़े मिलेगा आपको, लेकिन डीप रूट तक पहुंच पाया कि नहीं, और वो पैसा पहुंचने के बाद उसमें फायदा हो पाएगा। अब जैसे मैं आपको नरेगा का बात करूं जो अभी मनरेगा किया जाता है, हम सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चरली दे हैव क्रिएटेड असेट्स, आप उसमें तरह तरह का लूपहोल्स थे, तरह तरह का कठिनाई थे, चैलेंजेस थे, टारगेटिंग में शायद लोकल लेवल में अपना पॉलिटिकली इसको यूज किया जा रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गांव का स्टेटस में, रूरल एरिया में जो एसेट्स क्रिएशन का बात हुआ वो हुआ कि नहीं, बेशक हुआ है। दूसरी सवाल यह है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, किस तरह का खर्चे के बदले में आपको किस तरह का एसेट वापस मिला है
जी।
अब ये तो हम सबको पता है कि 100 रूपये देश में खर्च होता है तो 100 रूपये का चीज हमें वापस नहीं मिलता है, ना 100 रूपये का फायदा वापस मिलता है। देश में पिलफरेजेस होता है, टिंकरिंग होता है, कोई भी सरकार मौजूदा उनका कोशिश ये रहता है ये पिलफरेज टिंकरिंग को किस हद तक कम किया जाए, किस हद तक जिसको हम कहते हैं रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम किया जाए, और टारगेटिंग किस तरह से अच्छा किया जाए। हम सबको पता है सरकार ने कुछ साल पहले जब शुरुआत में आए थे जनधन अकाउंट खुलवाए थे, जहां पे सरकार कहे थे कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करे, कोई डीएम का थ्रू या कोई मंत्रालय का थ्रू या कोई एजेंसी का थ्रू ट्रांसफर ना करे, जिसका अकाउंट है अगर वो वहां पे टारगेटेड बेनिफिशियरी है उनके पास पैसा पहुंचे सीधे। सिमिलरली मैं मानता हूं अटल पेंशन योजना का अगर हम बात करें, एक तो रिटर्न का बात करो, ऑलरेडी वित्त मंत्री जी ने बोला 8% के करीब ऊपर रिटर्न है, तो एज अ पेंशन फंड इट्स अ गुड फंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब सवाल यह है कि किस हद तक टारगेटिंग हुआ है और किस हद तक उसके ऊपर कोई इस वक्त अलग से कुछ चिंता या चैलेंजेस नहीं आया। हालांकि अभी भी समय है समझना, 5-7 साल 10 साल चले, तो इसके ऊपर ध्यान रखते हुए मैं मानता हूं कि इस ह्यूज एक स्कीम जो है जहां पे इस तरह का टारगेटिंग का सुविधा और साथ में सही रिटर्न्स का जो सुविधा है, विच आई बिलीव आज का तारीख में इट्स मोर देन इफेक्टिव एवरेज मार्केट रेट रिटर्न दे रहा है, 8% काफी अच्छा होता है क्योंकि पेंशन फंड स्टॉक में तो पैसा नहीं लगा रहे। तो ऐसा स्थिति में एज आई बिलीव इट्स अ गुड परफॉर्मिंग फंड। ये जरूर है कि ट्रिकल डाउन होने में इसमें और अच्छे से अगर एग्जीक्यूटिवली इसको देखा जाए वो हो सकता है, लेकिन एज आई सेड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट समय के साथ साथ यूजर फ्रेंडली का साथ साथ समझ में थोड़ा वक्त लगता है, उनको एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है, लेकिन ओवरऑल स्कीम का जो उद्देश्य था कि किस तक ये फायदा लोगों को होना चाहिए और इस स्कीम में कौन टारगेट बेनिफिशियरीज है, ये दोनों ही आंकड़े सही रूप से एड्रेस किए जा रहे हैं।
द टारगेट ऑडियंस आई मीन पीपल हु कैन इन्वेस्ट इज बिटवीन 18 एंड 40 इयर्स एंड प्रोबेबली द ओनली कंडीशन इज दैट यू शुड नॉट बी इन इनकम टैक्स।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली
एंड देन यू कैन इन्वेस्ट।
दैट्स व्हाई आई सेड सी दैट्स हाउ द टारगेट यू नो ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड, इट हैज बीन डिजाइंड, बट देन एज आई सेड एनी स्कीम will have its execution flaws. I mean, no government will stand up and say it's a flawless scheme which we are doing it.
Yeah.
But what needs to be understood is how well we address those flaws, how fast, and at what cost-benefit analysis this particular scheme is being rolled out.
भारत में जब हम अपने देश में सोशल सिक्योरिटी की जब हम एक सिनेरियो को देखें तो आपको लगता है कि ये संतोषजनक स्तर पर है, सोशल सिक्योरिटी जो है अभी भी एक 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 कॉज ऑफ कंसर्न बनी हुई है?
बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। देश में सोशल सिक्योरिटी का अगर हम बात करें, हम लोग काफी पीछे हैं चाहे कोई भी स्कीम हो, और हम सबको पता है कि जिस देश में पॉपुलेशन इतना अधिक है, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ऐसे स्थिति में सोशल सिक्योरिटी का कमी होना फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है कि देश तो हमारा 77 ईयर्स के करीब चलिए हम लोग उम्र है देश का, और ऐसे स्थिति में जब तक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एक टायर्ड वे में हम बिल्डअप ना करें तो जो गरीबों का ऊपर जो अलग से उनका जो ससेप्टेबिलिटी और जो लायबिलिटी जिस तरह के साथ अधिक तरीके से बढ़ते हैं, रोजगार में वृद्धि हो रहा है ये बेशक सही है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी साथ में बहुत जरूरी है समझना। और जैसे मैंने बोला स्वास्थ्य, शिक्षा, इस देश में शिक्षा आजकल हर घर में, हर गली में, हर कोने में, पूरा कोई भी राज्य आप ले लीजिए, कॉलेज तक का फ्री में जाकर पढ़ सकते हैं, राइट? हम विवाद कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक है कि नहीं, वो एक दूसरा विवाद है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है विवाद होना भी चाहिए, लेकिन सरकार, मौजूदा सरकार जो भी है जैसे भी है, लगातार इतना सालों से काम करने के बाद शिक्षा तो पहुंचा दिया। कोई बच्चा अगर स्कूल जाना चाहता है उसका कोई स्कूल का कमी नहीं है, कहीं ना कहीं जाकर स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन साथ में स्वास्थ्य वो एक कमी है विच इज पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जब आप लोग सोचते हैं मैं सोशल सिक्योरिटी अगर बात करूं तो आज का तारीख में सरकारी हॉस्पिटल काफी सारे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, आधे कॉन्ट्रैक्टिंग एवरी वन इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट नहीं, उसमें बहुत बड़ा कमी,
सरकार आयुष्मान योजना लेकर के आई, इतनी महत्वपूर्ण योजना,
बिल्कुल बिल्कुल,
वेलनेस सेंटर भी क्रिएट हो रहे
हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि डिस्पाइट ऑल दी स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी का तर्ज से अभी भी मैं मानता हूं ये जो कमी है ये हमें सबको मिलकर पूरा करना पड़ेगा, बिकॉज ये सिर्फ केंद्र सरकार का तरफ सीमित नहीं है, काफी सारी चीज राज्य सरकार के दायरे में आते हैं, और हम सबको पता है ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी की तरफ से हम देखें। लेकिन अच्छी बात यह है विशाल, अगर आप देखेंगे पिछले 5-7 साल का 10 साल का दौरान अगर आप देखें, काफी सारे स्कीम्स जब केंद्र सरकार का शुरुआत जब हुए थे वो कहीं ना कहीं उसी स्कीम्स का छोटी बड़ी ऑल्टरनेटिव होकर राज्य सरकार ने अलग से लिया है, बेशक वो राजनीतिक रूप से अलग अलग सरकार चल रहे हैं, तो ये एक जो मान्यता है कि हाँ भाई ये हमें करना है अपना राज्य के लिए, अपना देश के लिए, ये बहुत बड़ा स्टार्ट है,
और कल्याणकारी राज्य बिल्कुल स्टेट की।
और अगर आप बोले कि आर वी वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ आर सोशल सिक्योरिटी, नहीं, आई थिंक देयर स्टिल ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क टू डू,
अभी काफी कुछ काम
वर्क इन प्रोग्रेस
सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी। बहरहाल रुख करते हैं शेयर बाजार का, लगातार 3 कारोबारी सत्र की तेजी के बाद आज घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.5% के नुकसान से 361 अंक गिरकर 72,470 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92 अंक फिसलकर 0.42% नीचे 22,004 पर आ गया। व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.71% लाभ में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.11% के नुकसान के साथ बंद हुआ।
Yes, what would you say about the markets, Jayanta?
Well, after a 3-day winning streak, I guess there was some corrections in terms of what we saw happening today.
Mm-hmm.
I understand banks and IT industry took a fall in that sense. And obviously, there would be a cautious approach if you speak of the next 2 to 3 weeks of how, because the election scenario is shaping up in India.
Yeah.
And obviously, there would be some lows and highs, mainly dominated by what's there in the global queues. The global queues have been mixed today specifically, and as I said, there will be some profit booking and intra-week profit booking and all things happening. I don't see any major upside or downside at this point of time in the markets.
Mm-hmm. Right. Let's go in for a short break and we'll be back soon, friends.
मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉरपोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है किसी भी पीओपी जैसे बैंकों एनबीएफसी के जरिए या nps trust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है।
Welcome back, friends. Let's have a look at the detailed stocks. Domestic benchmark indices, the Sensex and the Nifty, halted a three-day bull run today. The Sensex at the Bombay Stock Exchange settled 0.5% lower at 72,470 with a fall of 361 points, while Nifty was down 2 by 92 points or 0.42% at 22,004. Negative trade in both the indices can be attributed to volatility risen ahead of monthly future and options expiry. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.71% and the small-cap index down by 0.11%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 10 companies appreciated while 20 companies declined. Bajaj Finance climbed by 2.18%, LT gained 1.38% and NTPC appreciated by 1.31%. On the other hand, Power Grid plunged by 2.07%, Bharti Airtel fell 1.6% and Wipro declined 1.5%. In sectoral indices at the BSE, 13 sectors locked gains while 7 fell. Realty Index rose 1.45%, Services Index gained 1.48% and Tech Index added 0.83%. Jayanta, if you take a look at the last few days also, it's been up and down, but more or less we've been hovering at 72,000 plus at the Sensex. No news is good news.
Well, specifically when we're speaking of stock markets, we shouldn't speak on those lines. No news is good news because the markets survive and thrive on ups and downs, we all know. Uh-huh. And specifically in today's world, when people say that if the stock markets are rising up, you can make money. Mm-hmm. If the stock markets are falling, you can also make money for the F&O sector. Right? So either way, you can make money out of it. And it's very important to understand that a healthy movement in the stocks with no deep falls or no deep rises is always, I think that's a paraphrasing of no news is good news,
yes,
what you have just said a while ago. Mm-hmm. So let there be healthy corrections. And as I said, we are at a fairly good stage right now in terms of the levels we are speaking of. The markets are cautious in terms of understanding the elections, as I am sure the elections start panning out. Extremely initial days. People are looking forward to see how the elections would be panning out. And as they pan out in the next April, May and June till June 6th, when I guess the final results will be out, the markets would obviously take a semblance of how the news comes in from other areas. But as I said, global news would be an important dominating directive force for the market at this point of time.
If somebody were to invest in some sectors, which are the good sectors?
Oh, I have always said so. I mean, irrespective of markets falling or rising, I think you should pick up good sectors at this point of time. My flavors for 2024 would be typically banks to start with, NBFCs and financial services. Try to invest in the BSE 30 Sensex stocks. You just do a Google search and you get to know what the good stocks are from there. And construction sector. These would be four immediate focus areas, which I believe.
Realty.
Yeah. Construction and realty, obviously. That's a broader sector. IT is something which is fallen out of favor in terms of being laggards, but they have done, some of the stocks have done extremely well in the last 3 to 4 months. And I believe there would be a good dream run once the rates are, you know, in US are announced for a cut, which are expected, they say, 75 basis point cuts in three separate installments, hopefully this year. So if you are patient enough to see returns, next 2 to 2.5 years, invest in the IT sector.
IT also is dependent on how the US and the
UK. That's what I said. If you're following the US Fed rates and all, I think next 2 to 2.5 years. But IT has to be invested more. You can't have returns in the next 6 to 9 months immediately. I mean, there would be returns, but you can't have them immediately. You have to be invested more. So if you have that much of headroom for investment, including patience for the next 2 to 2.5 months, if you don't need your money, invest a part of it in the IT sector too.
और बात अब घरेलू मुद्रा की, रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.29 रुपए के स्तर पर दर्ज हुआ। और अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स ने 1.09% का उछाल आया। हांगकांग का हैंगसेंग 0.87% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.71% की बढ़त दर्ज हुई और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.17% की तेजी देखने को मिली। हालांकि जापान का निकेई 0.04% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मिलाजुला रुख था। समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 0.46% और फ्रांस का कैक 0.12% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.01% की मामूली गिरावट दर्शा रहा था।
A look at the US markets now. US stocks slipped today to start a shortened trading week as the rally that brought Wall Street to record levels took a breather. The Dow Jones Industrial Average fell 0.41%. The S&P 500 dipped 0.31%, while the Nasdaq Composite was down 0.27%. Employment rate up in the US, inflation down, US economy is finally on track. Can you
mostly
say that?
And joblessness is still at the same level what they were in. But it's important to understand there is a slight of an inflationary pressure, which the Fed has also announced. But they are committed to the fact that there will be rate cuts. So I think that's an important cue to look forward to in terms of optimism.
जी, और घरेलू मोर्चे पर भी जनता एक आर्थिक मोर्चे पर भी एक खबर आई है कि रिजर्व बैंक ने आंकड़े जारी किए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कम होकर जीडीपी का 1.2% रह गया है।
बिल्कुल,
ये इसको आप कैसे देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आना?
बिल्कुल, सी दैट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ प्ले टू द गवर्नमेंट, स्पेशली एनआईसी इज अ इलेक्शन ईयर, सो देयर वुड बी डिसीजन मेकिंग नीड टू बी टेकन इन द नेक्स्ट ईयर अराउंड जून व्हेन द गवर्नमेंट कम्स इन एंड इट हैज ओनली 3 quarters टू प्ले अप। सो आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच शुड बी फैक्टर्ड इन व्हेन द न्यू गवर्नमेंट कम्स।
All right, let's take a look at oil now. Oil was little changed today after price escalation in the previous session as investors took a more mixed view towards the loss of Russian refinery capacity after recent Ukrainian attacks, while a slightly weaker US dollar offered some support. The Brent crude oil futures was up by 0.03% and traded at $86.78, whereas Western Texas Intermediate gained 0.16% and traded at $82.08 when reports last came in.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर अनुबंध के लिए सोना आज 375 रुपए की तेजी से 66,397 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दिसंबर अनुबंध के लिए चांदी की वायदा कीमतें 83 रुपए की मजबूती से 75,006 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना बढ़त के साथ $2,217.70 प्रति औंस और चांदी $24.93 प्रति औंस के स्तर पर चल रहे थे। जनता, सोने में हम देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है लगातार।
अच्छी बात है,
अनस्टॉपेबल,
और 67,000 के आसपास पहुंचने को तैयार है।
अगर आप 4-5 महीने रिवाइंड करें प्रोग्राम, हम लोग पिछले जुलाई अगस्त से इसी प्रोग्राम में लगातार बोलते आ रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो में सोना बेशक वापस शामिल करें, उसमें उछाल आएंगे। हालांकि वहां से लेकर अब तक जिन्होंने हमारे साथ बात श्रोताओं ने सुने, हमें नहीं पता कितना लोगों ने सुने हैं, करीबन 15-20% उछाल आया हुआ है और दैट्स अ गुड जंप इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। और मैं मानता हूं इस साल रेट कट्स अगर होंगे तो सोने का दर इसमें भी ज्यादा और ऑप्टिमिज्म मिले और तेजी हो सकता है इसको।
जिन्होंने सॉवरेन गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा दे मस्ट बी वेरी हैप्पी।
एब्सोल्युटली, इंक्लूडिंग विद द 2-2.5% रिटर्न्स व्हाट वी गेट एडिशनल इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी।
यस, 2.5% एवरी ईयर। ऑलराइट, सो थैंक यू जयंता फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू वेरी मच
एंड अपडेटिंग अस विद योर व्यूज एंड रिव्यूज। वेल फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स विद बेल्जियन काउंटरपार्ट, डिस्कसेस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज इन डायवर्स सेक्टर्स। अटल पेंशन योजना डिजाइंड बेस्ट, गारंटीज मिनिमम 8% रिटर्न, सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। एंड ब्रेंट क्रूड एग्जिबिट्स अ मार्जिनल चेंज आफ्टर प्राइस एस्केलेशन इन द प्रीवियस सेशन। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज माई सेल्फ लालिमा अनेजा डैंग एंड माई को एंकर विशाल शर्मा स्टैंडिंग ऑफ। नमस्कार।
नमस्कार।
वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉरपोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या nps trust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
Bye.